ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मार्थ काम इति यो भीतृस्त्रिवर्ग ईक्षात्रैनयदमो विविधा च वार्ता निगमस्य सत्यम् स्वात्मार्पणं स्वसुहृदये परमस्य पुंसः। धर्म धर्म अर्थ आर्थिक उन्नति कामः संयमित इंद्र तृप्ति इति इस प्रकार यह जो अभिहिता बताए गए त्रिवर्ग तीन का समूह इच्छा आत्म साक्षात्कार त्रय वैदिक अनुष्ठान नय तर्क दमो तथा विधि एवं व्यवस्था विद्या विविधा अनेक प्रकार च भी वार्ता वृत्ति परक कर्तव्य या जीविका मन्ये मैं मानता हूँ तत उनको एतत वे अखिलम सारा निगमस्य वेदों का सत्यम सत्य स्व आत्म अर्पणम अपने को पूरी तरह अर्पित कर देना स्वसुहृद अपने परम मित्र को परमस्य परम पुंसः पुरुष। धन्यवाद बढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की मेरे पीछे दोहराइए। धर्म अर्थ तथा काम इन तीनों को वेदों में त्रिवर्ग अर्थात मोक्ष के तीन साधन कहा गया है। इन तीन वर्गों के अंतर्गत ही शिक्षा तथा आत्म साक्षात्कार भौतिक आदेशानुसार संपन्न कर्मकांड विधि तथा व्यवस्था विज्ञान एवं जीविका अर्जित करने के विविध साधन आते हैं। ये तो वेदों के अध्ययन के बाह्य विषय हैं, अतः मैं उन्हें भौतिक मानता हूँ, किंतु मैं भगवान विष्णु के चरण कमलों में समर्पण को दिव्य मानता हूँ। तात्पर्य पढ़ता हूँ। प्रहलाद महाराज का ये उपदेश भक्ति के दिव्य स्थिति पर बल देते हैं, जैसा कि भगवद गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में पुष्टि की गई है। माम च यो अभिविचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यान भू ब्रह्म भुवाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में लगा रहता है वह किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म के पद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में पूर्णतया संलग्न रहता है वह तुरंत ही दिव्य पद को प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्मभूत अवस्था है। ऐसी शिक्षा या कार्य जो ब्रह्मभूत पद या आत्म साक्षात्कार के पद पर नहीं होता वह भौतिक माना जाता है। प्रहलाद महाराज का कहना है कि कोई भी भौतिक वस्तु परम सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि परम सत्य आध्यात्मिक पद पर होता है। इसकी पुष्टि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में 2 अध्याय के 45वें श्लोक में की है, जहाँ पर वो कहते हैं त्रैगुण विषया वेदो निस्त्रय गुणों भवार्चना। वेदों में केवल तीन गुणों का वर्णन मिलता है। हे अर्जुन, इन गुणों से ऊपर उठो, इन सबसे परे हो। भले ही किसी के कर्मों की स्वीकृति वेदों द्वारा क्यों ना मिली हो, भौतिक पद पर कर्म करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का चरम लक्ष्य तो आध्यात्मिक पद पर रहना है, मानव उद्देश्य ही है। सारांशतः वैदिक कर्मकांडों तथा आदेशों की अवमानना नहीं की जानी चाहिए, वे आध्यात्मिक पद तक पहुंचने के साधन हैं, किंतु यदि कोई इस पद तक नहीं पहुंच पाता तो सारे वैदिक अनुष्ठान केवल समय के ही अप्रिय हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के आठवें श्लोक में हुई है। धर्म स्वनुष्ठता पुंसा विश्वक सेना कथा सुया नोत्पाद ये रति क्षमा एव ही केवलम। कर्तव्य धर्म चाहे जिस गति के पुरुष द्वारा किए जाएं, यदि वे परमेश्वर के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं कर पाते तो सारा श्रम निरर्थक है। यदि कोई दृढ़ता पूर्वक धर्म के कार्यों को करता है किंतु यदि वह परमेश्वर की शरण में नहीं जाता या उसका मोक्ष या ऊपर उठने के सारे साधन समय तथा श्रम के अपव्यय मात्र है। धर्म अर्थ तथा काम, इन तीनों को वेदों में त्रिवर्ग अर्थात मोक्ष के तीन साधन कहा गया है। यहां पर गोपाल जी जो है वेदों के माध्यम से विशेष बनाते हैं कि आपको धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन तीन में से चार में से क्या चीज चाहिए। धर्म का यहां इसमें मीनिंग दिया गया है अपने नियत कर्तव्यों का पालन, जो आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आदमी जो है प्रिस्क्राइब नियत कर्म है उनका पालन करना। आपको जो वैदिक लिटरेचर है, जो वेद है हमारे, उसके अंदर जो प्रथम पोर्शन है वो कर्मकांड के बारे में। कर्मकांड का अर्थ क्या है? कांड तो पोर्शन को कहते हैं, उपासना कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड, कांड जो है वो पोर्शन को कहा जाता है। कर्म कांड का मतलब क्या है कि आप कर्म करते हुए इस भौतिक संसार में किस प्रकार से सुख सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, इंद्रिय भोग के लायक जो आपको सुविधाएं चाहिए उनको प्राप्त कर सकते हैं, उसका ज्ञान दिया। फर्स्ट पोर्शन जो वेदों का। अब दिक्कत क्या होती है कि कुछ लोग जो है वेदों का ज्ञान बखारते हैं, उतना ही पढ़ते हैं जितना कि उनको अपनी भौतिक सुख सुविधाओं में प्राप्ति के लिए समझ में आता है, उसके आगे क्या है उसको जानने का प्रयास नहीं करते। आहा देखा, पता लग गया, अच्छा घर कैसे बनेगा, सुंदरता कैसे प्राप्त होगी, अच्छी पत्नी कैसे मिलेगी, अच्छा पति कैसे मिलेगा, संतान कैसे होगी, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें जो हैं जब इनका ज्ञान प्राप्त होता है तो उसी से मोहित हो जाते हैं। आप बाग में घूमने के लिए जाते हो तो आपको बाग के अंदर, गार्डन के अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज आकर्षित करती है? पुष्प, फूल, कितने सुंदर फूल खिले, रंग बिरंगे कितने सुंदर फूल खिले। तो यहां वेदों का जो कर्म कांड का हिस्सा उसको क्या कहा गया है? पुष्पिताम। कि आपको, अब दूसरी बात पे आते हैं कि आपको फल कच्चा चाहिए या पका हुआ चाहिए, कैसा फल खाना पसंद करें, कच्चा फल चाहिए कि पका फल चाहिए। तो वेदों की जो शाखाएं हैं उसमें कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, जो उसके फूल हैं वो है धर्म अर्थ और काम। फल क्या है? फल क्या है? फल जो बात यहां कही जा रही है कि तीनों को वेदों में त्रिवर्ग अर्थात मोक्ष के तीन साधन कहा गया है, पहले फूल बनता है तो उससे फिर फल बनता है। फल जो है बिना फूल के आ सकता है क्या? तो पहले फूल आता है उसके बाद फल आता है। तो फल आपको चाहिए तो फल आपको जो है अगर चाहिए कच्चा, कच्चा फल चाहिए, तब आप वेदों के ज्ञान से अपने आप को उस लेवल पे ले आते हो जिसमें कि आपको एक अनराइपेंड फ्रूट, एक कच्चे फल की प्राप्ति होती है। अर्थात पूर्ण भक्ति क्या है, पूर्ण ज्ञान क्या है, इसका मालूमात नहीं होती। परंतु अगर आपको पका हुआ फल चाहिए तो पके फल का जो प्राप्ति है उसका साधन बताया गया है उपनिषद के अंदर, छांद्योग्य उपनिषद से शुरू होता है और श्रीमद् भागवतम में जाके समाप्त होता है। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो सारे वेदों का, सारे उपनिषदों का पका हुआ फल। तो अगर आप जो है श्रीमद् भागवतम का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम सुन रहे हैं, तो आपको जो है पका हुआ फल मिलता है। अर्थात कि धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों बेस बनते हैं मोक्ष के तीन साधन। अल्टीमेटली क्या प्राप्त होता है? मोक्ष। और पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवतम समझने के बाद, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, उसके ऊपर चलने के बाद क्या प्राप्त होगा? मोक्ष। यहां कहा गया है इन तीन वर्गों के अंतर्गति शिक्षा तथा आत्म साक्षात्कार, भौतिक आदेशानुसार संपन्न कर्मकांड, विधि तथा व्यवस्था, विज्ञान या जीविका अर्जित करने के साधन आते हैं। आपको भौतिक संसार में रहना है, गृहस्थी है, परिवार है, पत्नी, बच्चे, माता पिता, सगे संबंधी, इन सबके साथ रहना है। तो सबके साथ रहते हुए आपको भगवान की भक्ति कैसे करनी है इसका ज्ञान प्राप्त करना। लोग कहते हैं कि मृत्यु होती है उसके बाद सब लोग भगवान में लीन हो जाते हैं। कहीं भी डेथ होती है ना तो उसे जाके सुनिए कि उसकी जो उठाला होता है कि ये आत्मा अब प्रभु के चरणों में विलीन हो गई, ये आत्मा जो है प्रभु के चरणों में, ये भगवान में लीन हो गई। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र जो है, जो शब्द है, इनको नकारता है। लीन होने का अर्थ क्या है? अस्तित्व का समाप्त हो जाना। क्या अस्तित्व समाप्त हो जाता है? क्या आत्मा का अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि आत्मा, हर आत्मा, अगर हर व्यक्ति जो है मृत्यु जब प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा भगवान के धाम में ही जाएगी, ऐसा कोई निश्चित है? खुले हैं दरवाजे, जिस आत्मा का मन किया घुस गई, चलो जी आ जाओ अंदर, एवरीबॉडी इज वेलकम, ऐसा है क्या? जीव अपने कर्म के फलों के अनुसार ही अगला लक्ष्य प्राप्त करता है। उसको भगवान के धाम जाना है तो उसके मुताबिक उसके कर्म होने चाहिए। और कर्म जब करेगा तो यहां जो है बड़ा स्पष्ट लिखा गया है कि दिव्य स्थिति का अर्थ क्या है? ब्रह्म का पद। जीव को ब्रह्म के पद पर आना है। जब तक भगवान के गुण और जीव के गुण एक समान नहीं हो जाएंगे तब तक तो है जीव भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। और यही बात जो है भगवान बता रहे हैं दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक के अंदर। क्या कह रहे हैं? एषा ब्राह्मी स्थिति पार्था नयनम प्राप्त विमुहति। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है, कब होती है ब्राह्मी स्थिति? कब प्राप्त होती है? ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है। भगवद गीता के अंदर जगह जगह ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म भूत जो है शब्द जो है इसको इस्तेमाल किया गया है। जब तक आप भक्ति में परफेक्ट नहीं हो जाते, परफेक्शन नहीं आ जाती, जो ब्रह्म का पद प्राप्त करने के लिए यहां पर योग्यता दी गई है, जब तक आप उस योग्यता को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आप ब्रह्म के पद पर नहीं आ सकते। और ब्रह्म के पद पर आने का अर्थ यह है कि अब आपका भगवान के धाम में जाना निश्चित है, कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई कितना भी जोर लगा ले, रुकावट नहीं होगी, रास्ता बिल्कुल खुला है, एंट्रेंस ओपन है। कंडीशन एक अप्लाई करती है कि आपको ब्रह्म के पद पर प्राप्त आना, उस पर आना। उसमें एक कंडीशन क्या बताई कि स्थित प्रज्ञ होना, आपकी इंटेलिजेंस फिक्स्ड होनी चाहिए। बुद्धि के द्वारा विवेकमय कार्य करने हैं, क्लियर कट समझ आना चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सत्य क्या है और असत्य क्या है, करणीय क्या है अकरणीय क्या है। मेरे जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अर्थात भगवान के धाम जाने के लिए मुझे ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करनी है, और उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो योग्यता भगवान भगवत गीता में और हमारे वैष्णव आचार्य जो है या व्यास देव जी ने जो भागवतम के अंदर लिखा है उनका ज्ञान प्राप्त करके उसके ऊपर चलना अति आवश्यक है। बिना ब्रह्म का पद प्राप्त किए आप भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। ब्राह्मी का शब्द है जिससे ब्रह्म की प्राप्ति हो। स्थित प्रज्ञ जब व्यक्ति हो जाता है, जब उसकी इंटेलिजेंस फिक्स्ड हो जाती है, बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है, तब उसे समझ में आता है कि भक्ति के अलावा मेरे पास और कोई साधन नहीं है भगवान का प्रेम प्राप्त करने का। ज्ञान लेता रहता है, बहुत सारी चीजों का ज्ञान मिलता रहता है, परंतु उस ज्ञान का जो प्रयोग है, उस ज्ञान का जो इस्तेमाल है, वो क्या है कि आप सारे ज्ञान को प्राप्त करके आपने भौतिक सृष्टि के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, तीनों गुणों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, वेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, कर्मकांड के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, ध्यान योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म योग, सब ज्ञान प्राप्त करके अल्टीमेटली जब आप भक्ति योग में आते हैं, अर्थात इसके द्वारा आप ये समझते हैं कि मुझे भक्ति भगवान की कैसे करनी है, और उसका जो प्रोसेस है सारा समझ में आने के बाद फिर आप आते हो ब्रह्म के पद पर। तो ब्रह्म का पद क्या है? छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के पहले श्लोक में उस पद की व्याख्या की गई कि ब्रह्म के पद के अंदर आपके अंदर 8 गुण आ जाते हैं। 8 8 गुणों की प्राप्ति करना ही ब्रह्मभूत अवस्था है। उसमें पहला गुण है धर्माधर्म से शून्य, अर्थात पाप रहित। अब एक व्यक्ति जो है ऐसी स्थिति में आ जाता है कि अब उससे कोई भी, यहां पाप शब्द जो है उसमें दो जगह इस्तेमाल हुआ है, पुण्य के लिए भी और पाप के लिए भी, क्योंकि कोई भी कार्य जो आपको भौतिक शरीर की प्राप्ति करवाता है वो पाप कहलाता है। ये अलग बात है कि भौतिक शरीर प्राप्त करके हम कुछ सुख भोगना चाहते हैं तो उसमें कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको पुण्य कह दिया जाता है, पुण्य प्राप्ति होगी तो थोड़ा भौतिक शरीर के अंदर सुख की प्राप्ति होगी, जब पाप कार्य होगा पाप फल मिलेगा तो भौतिक शरीर के अंदर दुख की प्राप्ति होगी। परंतु भौतिक शरीर को प्राप्त करना ही पाप पूर्ण कार्य है, वो आपको पुण्य का कार्य नहीं कहलाता। तो शास्त्र के अनुसार जब धर्माधर्म से शून्य अर्थात पाप रहित हो जाता है, मृत्यु रहित, जरा रहित, भोजन इच्छा रहित, पिपासा शून्य, शोक रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प, ये आठ गुणों की प्राप्ति जब जीव कर लेता है भक्ति के द्वारा, क्योंकि भक्ति के सिवाय और कोई रास्ता नहीं, आठ गुणों की प्राप्ति करने के बाद ही उसको जो है भगवान के धाम में जाने का चांस मिलता है। जब हम चर्चा करते हैं 18वें अध्याय के 54वें श्लोक की, या भगवान कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, प्रश्न वही आता है, दिव्य पद मतलब ब्रह्म भूत अवस्था, वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है, पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न क्यों हो जाता है कि एक कि उसको अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया है। जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की शरणागति, भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर देना। उसे पता लग जाता है कि अब मेरा जो है इस स्थिति में बुद्धि मेरी स्थिर हो चुकी है, तीनों गुणों से मैं ऊपर उठ चुका हूं और अब मेरा भगवान के धाम जाने का रास्ता खुल गया है, मोक्ष की प्राप्ति डेफिनेट है, उद्देश्य मैंने प्राप्त कर लिया है, अब मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई कुंठा नहीं है, कोई दुख नहीं है। वह ना तो कभी शोक करता है ना किसी वस्तु की कामना करता है। बिकम्स डिजायरलेस। कितनी डिजायर? जो इसी के पहले दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में कही गई है कि जब व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, विहाय कामान सर्वान पुमान शक्ति निष्प्रा निर्मम निरंकार से शांति में अधिगच्छति, भौतिक डिजायर से बिल्कुल निर्लिप्त हो जाता है, उसको कोई डिजायर ही नहीं रहती, किसी प्रकार का भौतिक सुख भोगने की इच्छा ही नहीं आती उसके अंदर। दो कंडीशन है, एक में इच्छा आती है परंतु उसे भोगने का प्रयास नहीं करता। इच्छा कैसे आती है? जैसे नदियों का प्रवाह समुद्र की ओर लगातार लगा रहता है, इसी तरह इच्छाओं का प्रवाह भी जो है उसके अंदर लगातार रहता है परंतु इच्छाओं को तुष्ट करने की कोशिश नहीं करता। दूसरी स्थिति में इच्छा ही नहीं, कौन सी स्थिति बेटर है, इच्छा का आना और तुष्ट ना करना, या इच्छा का आना ही नहीं, कौन सी स्थिति बेटर है? इच्छा ही नहीं आई। जब इच्छा नहीं होती है, मिथ्या अहंकार ममता को त्याग दिया है, तब वो जो है ब्राह्मी स्थिति अर्थात ब्रह्म के पद पे आता, मतलब किसी वस्तु की कामना नहीं है, इज नॉट डिजायर एट ऑल, शोक नहीं, ये नहीं मिला बड़ा दुख हो रहा है, रश्मि मिल जाता तो अच्छा रहता, कोई शोक ही नहीं किसी प्रकार का, क्योंकि इच्छा ही नहीं। शास्त्र कहता है कि दुख कब होता है? दुख तब इच्छा करने का प्रयास करते हैं परंतु इच्छा पूरी नहीं होती, मतलब दुख होता है जब आप सुख की प्राप्ति की कामना करते हैं और सुख प्राप्त नहीं होता तो दुख होता है। जब आपके अंदर कामना ही नहीं है, कामना ही केवल एक है कि किस तरह मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करूं, किस तरह मैं अपनी इंद्रियों को तुष्ट न करके भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य करूं, किस तरह मैं अपना मन भगवान को दे दूं, मन मना भगवत भक्तो अध्याजी माम नमस्कार, कैसे भगवान के प्रति समर्पित हो जाऊं, कैसे भगवान का भक्त बनूं, कैसे भगवान की पूजा अर्चना करूं और कैसे भगवान को अपना मन दे दूं, जब वो लेवल आ जाएगा वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है, तब आप किसी जीव के किसी के द्वेष नहीं करते, घृणा नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, आपका प्रत्येक जीव से प्रेम रहता। अभी क्या लेवल है? अगर किसी भक्त ने कुछ कह दिया तो उसको हरे कृष्णा भी नहीं करते हैं, सब बगल से निकल जाते हैं, इसको नहीं बोलना है, दुश्मन है मेरा, मेरा वैरी है ये, अगर आपके साथ कोई बुरा काम हुआ है तो भक्त कहता है कि ये जो बुरा मेरे साथ व्यवहार हुआ या मेरे प्रति कुछ बुरा हुआ, ये मेरे कर्मों का फल है, उसका दोष नहीं है, वो मेरे कर्मों के फल को भुगतवाने का निमित्त बन गया। इस बिकम ए टूल, वो एक हथियार औजार बन गया है मेरे कर्मों के फल को भुगतवाने के लिए। और कितनी बड़ी बात है कि मेरे पाप के फल को कम करने के लिए उसने पाप कर दिया। फील ये आता है जब भक्ति के ऊपर के प्लेटफॉर्म में जाते हैं, तब उससे वैर न करके, उससे दुश्मनी न करके उसका धन्यवाद करते हैं, उससे ज्यादा एसोसिएट करता है भक्त कि इसने जो पाप का कार्य कर दिया है मेरा पाप भुगतवाने के लिए, इसको उस पाप के कार्य से कैसे बाहर निकाला जाए, अर्थात इसको भक्ति में ज्यादा लगाया जाए ताकि इससे पाप का कार्य जो हुआ है वो निपट जाए। क्या अभी हम ये बात सोचते हैं? क्या अभी हमारा ये लेवल है सोचने का? हम नहीं सोचते, क्योंकि अभी तक वो संभाव नहीं आया। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कवि अस्तनी, अभी वो संभाव नहीं आया है कि हमारा प्रत्येक जीव के प्रति एक समान प्रेम का भाव रहे, प्रेम का। अभी वो प्रेम निकला नहीं बाहर। फिर भगवान कहते हैं उस अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। और अगले श्लोक में कहते हैं भक्त्या माम अभिजान आती यावन शास्मी तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा अपशिते तदंतरम। केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। कृष्णा एस इट इज, एस इट इज। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है नराकार, नर का आकार लिया है, तो हमारी तरह थे, उनका शरीर भी हमारी तरह था, हार्ड मास का बना हुआ। उनका शरीर जो है वो माया द्वारा बना हुआ है, ऐसा विचार करते हैं लोग, क्योंकि उन्होंने हम जैसा स्वरूप लिया है, हम जैसा रंग रूप आकार लेके इस धरती पर प्रकट हुए। ये फील गलत है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। भगवान हर स्थिति में ट्रांसेंडेंटल है, कोई भी आकार लेते हैं, चाहे मत्स्य अवतार लिया, चाहे वराह अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, कोई भी इनकार्नेशन हुआ, सभी के वो शरीर, उनको माया द्वारा शरीर प्राप्त नहीं होता, वो माया के स्वामी, माया के अधीन नहीं। तो भगवान को यथा रूप में जानना, भगवान के जन्म और भगवान के कर्म दोनों दिव्य है, जन्म कर्म चे दिव्यम, दोनों को जानना बड़ा आवश्यक है। और कैसे जाना जा सकता है? केवल भक्ति के द्वारा। जब भगवान को जान लेते हैं तब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में वृत्त होता है और वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है, और कोई प्रोसेस नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, कई बार दिया है, आज से रिपीट करता हूं। एक लड़का रोज सवेरे पार्क घूमने जाता है, और एक लड़की भी घूमने आती है, देखता है उसको, वो घूम रही है, बड़ी सुंदर है। बैठे बैठे उसके मन के अंदर कई बार उसकी छवि आ जाती है, आती है और चली जाती, निरंतर स्मरण नहीं है उसका। अनन्य चेता सप्तम योग, मतलब अनन्य भाव से उसका चिंतन करना नहीं हो रहा उससे, आती है और चली जाती है। कुछ क्षणों के लिए आई, दो मिनट, पांच मिनट, एक मिनट, आधा मिनट, उसके बाद फिर दूसरे कामों में व्यस्त हो गया। अब उस लड़की के साथ उसका विवाह फिक्स हो गया, शादी तय हो गई, एक संबंध स्थापित हो गया। पहले एक संबंध था दूरी का, अब संबंध कैसा आ गया है, निकटता का। अब उसको जो है सोते जागते उठते बैठते लड़की का ख्याल रहता, उसके मन से निकलती है क्या? नहीं निकलती। अगर उसने कह दिया कि सिनेमा हॉल के बाहर 3 बजे मिलना, तो 2:45 खड़ा मिलेगा वहां पे, लेट ना हो जाओ, और ध्यान उसी का रहता। ये जो स्मरण हो रहा है ये कब हो रहा है? जब आपको अपना संबंध उसके साथ समझ में आ गया, यथारूप से जान लिया। जब तक आप भगवान के साथ अपना संबंध नहीं समझेंगे कि मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, जो बात यह कही जा रही है कि मुझ भगवान को यथारूप में समझ लेता है, अर्थात एज इट इज, मैं कौन हूं, मेरा तुम्हारे से क्या संबंध है। जिस दिन वो संबंध समझ में आ जाता है, उसी के बाद आप जानते हो कि इस संबंध को निभाना कैसे, पहले नहीं पता होता। पड़ोसी है आपका, घर के साथ रहता है, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, कोई रिश्ता नहीं है आपका, सड़क पे चलते चलते हाय हेलो हो जाती है बस। कल आपके लड़के का उसकी लड़की से विवाह तय हो जाता, संबंध निभाने में फर्क आता है कि नहीं आता? उस संबंध को मैनेज कैसे करना है, उसमें अंतर आता है कि नहीं आता? कब आया? जब संबंध स्थापित। जब तक भगवान के साथ आपका संबंध स्थापित नहीं हो जाएगा, जब तक भगवान के साथ आपको अपना संबंध समझ में नहीं आ जाएगा, तब तक जो है आप भगवान की भक्ति में लग नहीं पाओगे। क्यों करूं, किस लिए करूं, क्या आवश्यकता है? वो आवश्यकता तब समझ में आएगी जब संबंध समझ में आ जाएगा। यही बात जो है यहां कही जा रही है, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं कि जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक पद है, मतलब जीवन का लक्ष्य जो है आपका वो भक्ति है। आध्यात्मिक का मतलब होता है भगवान की सेवा। अब आप आत्मा के लेवल पे सोच रहे हो, शरीर के लेवल पे नहीं, भौतिक सुख ऐश्वर्य की चिंता नहीं है आपको। मेरे लिए जो असेंशियल है इस भौतिक संसार में गृहस्थी में रहते हुए, उसको मुझे इस्तेमाल करना है। जो अनएसेंशियल है, जो नॉन असेंशियल है, जो चाहिए नहीं है, जो मेरे को लगता है कि मेरे को भौतिक संसार में उलझाए हुए है, उसको त्याग देना, उससे वैराग्य चाहिए। तो यहां कहा जा रहा है कि धर्म चाहे जिस वृत्ति के पुरुष द्वारा किए जाए, आप कोई भी कार्य करते हो, आपका कोई भी वर्ण हो, कोई भी आश्रम हो, आप जब कार्य करते हैं तो आपको अपने कर्तव्य का भान होना चाहिए कि क्या करनी है और क्या अकरनी है, सॉरी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विवेक, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब एक इंटेलिजेंस के द्वारा, प्रॉपर इंटेलिजेंस के द्वारा आपको जानना चाहिए कि मेरा भगवान से क्या संबंध है और मुझे उसे कैसे निभाना है। अगर आप भगवद गीता पढ़ के, भागवतम पढ़ के, कथा सुनने के बाद या भौतिक संसार में रहते हुए इसके प्रति आकर्षित नहीं होते, भगवद गीता सुनी आकर्षण नहीं पैदा हुआ, भागवतम पढ़ी, भागवतम सुनी, परंतु अभी वो आकर्षण पैदा नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक संबंध भौतिक संसार से टूटा नहीं, अभी तक संबंध भौतिक संसार का ही समझ में आ रहा है, भगवान के साथ क्या संबंध है ये बात समझ में आई नहीं रही। तो आपकी सारी मेहनत अर्थात मनुष्य जीवन प्राप्त करना निरर्थक है, यूजलेस। और याज्ञवल्क्य जी जो है गार्गी से कहते हैं, अगर कोई मनुष्य इस संसार में भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होता और भगवान के धाम जाने के ज्ञान को प्राप्त करके उसके ऊपर नहीं चलता, उसका पालन नहीं करता, तो वो कृपण है, कंजूस है। मतलब उसके पास इस भौतिक संसार में रहते हुए, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करते हुए भगवान के धाम जाने की, भगवान का प्रेम प्राप्त करने की पूरी सुविधा है, मोक्ष प्राप्त करने की पूरी सुविधा है, भगवान की शरण में जाने की पूरी सुविधा है, परंतु वो उस सुविधा का इस्तेमाल नहीं करता, तो उससे बड़ा कंजूस और कोई नहीं। आज यही समाप्त करते हैं 5 मिनट के लिए। श्री माधवेंद्र पुरी उनका तिरोभाव दिवस है, उनके बारे में भी जरा सुनिएगा। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पूर्व अपने नित्य पार्षदों जैसे श्री अद्वैत आचार्य श्री जगन्नाथ मिश्र शची माता माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी आदि को पृथ्वी पर भेजा। श्री माधवेंद्रपुरी ने माधवाचार्य संप्रदाय के श्री लक्ष्मीपति तीर्थ से दीक्षा ग्रहण करी। उनके अनेक शिष्य थे किंतु श्री अद्वैत आचार्य एवं श्री ईश्वरपुरी उनमें प्रमुख थे। बंगाल तथा क्षेत्र मंडल के समस्त वैष्णव किसी न किसी प्रकार से श्री माधवेंद्रपुरी से संबंध थे। चैतन्य महाप्रभु के आने के उपरांत उनके अनेक शिष्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हो गए। माधवेंद्रपुरी की देह पूर्णता दिव्य प्रेममयी थी तथा उनके अनुयायी भी ऐसे थे। उन्होंने असाधारण भगवत प्रेम प्रदर्शित किया। एक सघन श्यामल घन देखकर वह मूर्छित होकर गिर पड़ते। वह अहर्निश श्री कृष्ण प्रेम सुधा पानकर सुधहीन रहते। ये लिखते हैं वृंदावन दास ठाकुर। भारत भूमि का व्यापक भ्रमण करने के उपरांत उन्होंने वृंदावन एवं उड़ीसा में अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने वृंदावन की पुनः स्थापना का कार्य प्रारंभ किया जिसके तदंतर श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने गतिशील रखा। कुंज कुंज विचर कर राधा कृष्ण की सुमधुर वृंदावन लीलाओं का स्मरण करते हुए माधवेंद्रपुरी भावविहल होकर मूर्छित हो जाते। श्री गोपाल ने श्री माधवेंद्रपुरी को स्वप्नादेश दिया कि वे कुंज में आच्छादित श्री गोपाल अर्चय विग्रह को बाहर निकालकर गोवर्धन पर्वत पर स्थापित करें। माधवेंद्रपुरी ने अन्नकूट अर्पण कर गोपाल का प्रतिष्ठापन महोत्सव मनाया। ये अन्नकूट महोत्सव जो गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाना जाता है भारत के वृंदावन क्षेत्र तथा विश्व भर में वैष्णवों का एक प्रमुख उत्सव है। श्री नाथ जी के नाम से विख्यात मूल श्री गोपाल अर्च विग्रह अब नाथ द्वारा राजस्थान में पूजा जाता है। माधवेंद्रपुरी ने माधवाचार्य संप्रदाय में माधुर्य भाव की धारणा परिवर्तित की। माधवेंद्रपुरी ने प्रेमा भक्ति का बीज बोया और श्री चैतन्य महाप्रभु सबजन पर मधुर मधुर प्रेम फलों की वृष्टि करने वाले विराट वृक्ष बन गए। उन्होंने विरह भाव अर्थात भगवान से विछोह में आस्वादन किया, जाने वाला प्रेम भाव भी प्रकाशित किया। मध्य संप्रदाय की उनकी शाखा इस भगवत प्रेम द्वारा अपनी विशिष्टता दिखलाती है। ये मध्य गौड़ीय संप्रदाय कहलाती है। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने विरह भाव की एक अत्यंत गहन दशा दर्शाई। उसमें असीम वृद्धि हो गई जब महाप्रभु ने श्रीमद भागवत दशम स्कंद कृष्ण करनामृत गीत गोविंद चंडीदास एवं विद्यापति की प्रेम पदावली सुनी। महाप्रभु का विरह उनके परम गुरु माधवेंद्रपुरी द्वारा वाचित एक श्लोक से आरंभ हुआ है। आई दीन दर्याद्रनाथ हे मथुरा नाथ कदाप्लुक्यसे हृदयम तद्वा लोकातरम रहिति भ्रामिति किं करोऽहम्। हे दीनों के प्रति दया से द्रवीभूत होने वाले प्रभु, हे स्वामी, हे मथुरापति, मुझे आपके दर्शन का लाभ कब होगा? आपके दर्शन न कर पाने से मेरा हृदय क्षोभाकुल हो गया है। हे प्रिय, मैं अत्यंत विहल हूँ, अब मैं क्या करूँ? श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं, जिस प्रकार कौस्तुभ मणि समस्त दुर्लभ रत्नों से अधिक मूल्यवान है, उसी प्रकार ये श्लोक रस काव्य निधि का अनमोल रत्न है। वस्तुतः ये श्लोक स्वयं श्री राधा रानी ने स्वरित किया था। ये श्याम सुंदर के प्रति राधा की करुण पुकार थी जो उन्हें भग्न हृदय अवस्था में अकेले वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए थे। राधा रानी की कृपा ने वही श्लोक माधवेंद्रपुरी के श्री मुख से श्रावित किया। इस श्लोक के कुछ शब्दों का उच्चारण ही महाप्रभु के प्रेम के कपाट विदीर्ण कर देता है और वे भाव विहोर होकर अचेत अवस्था में भूमि पर गिर जाते हैं। श्री कृष्ण से तीव्र वियोग का अनुभव करते हुए माधवेंद्रपुरी इस जगत से प्रयाण करते समय इस श्लोक का निरंतर उच्चारण करते रहे। कृष्णदास कविराज का कहना है कि श्लोक के माध्यम से माधवेंद्रपुरी भक्तजन को सिखाते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण के विरह के तीव्र भावों का अनुशीलन कर कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। गौड़ीय वैष्णव मानते हैं कि श्लोक विरह भाव के सार को व्यक्त करता है। गौड़ीय संप्रदाय सिखाता है कि विरह भाव में राधा कृष्ण की आराधना भक्ति की उच्चतम अवस्था का प्रतीक है। आत्म साक्षात्कार की स्थिति में भक्त श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में समग्र जगत को उसे सर्वथा रिक्त पाता है। माधव के बिना एक क्षण भी एक युग के समान प्रतीत होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव उस दिव्य उन्माद महाभाव सागर में तैरते रहते थे जो भ्रमर गीत में श्री राधा ने प्रदर्शित किया है। इस श्लोक में माधवेंद्रपुरी तादृश भाव प्रकट करते हैं। गौड़ीय वैष्णवों का मानना है कि भगवान गौरांग उनकी प्रकट लीला के पर्यंत प्रदर्शित प्रेम धारा माधवेंद्रपुरी से प्रारंभ हुई, तदनंतर ये ईश्वरपुरी के माध्यम से प्रवाहित हुई, जिन्होंने महाप्रभु के गुरु की भूमिका निभाई। श्री माधवेंद्रपुरी की समाधि उड़ीसा के रेमुना क्षेत्र में शीरचोर गोपीनाथ मंदिर के समीप है। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की।